हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 15। इन अत्यंत ही पवित्र और आध्यात्मिक शब्दों का उच्चारण करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माध्यस्य यतो वयादितरतश्च चाधीष्वभि क्यः स्वरात् तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मोहयन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकै तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रिद्ध्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्व पदान्तिकम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैश्चिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशास्तिकम् जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतम गदाधारम शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। नैमिषारण्य के तीर्थ स्थल पर 88,000 ऋषि सूची गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं और अब तक 3 प्रश्न हो चुके हैं और इसके बाद श्लोक नंबर 14 में हमने पढ़ा कि ऋषिगण भगवान के पवित्र नाम की महिमा का गुणगान करते हैं कि इतने ऋषिगण कहते हैं श्लोक नंबर 14 में आपन्न संस्थितिं घोराम यन्नाम विवशो गणन ततः सद्यो विमुच्येत यद्धि भेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं क्योंकि साक्षात भय भी भगवान के पवित्र नाम से भयभीत हो जाता है। इतना कहने के बाद अब ऋषिगण भगवान के भक्तों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि जो भगवान सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो सदैव अपने भक्तों के प्रेम के वश में होते हैं और जो भक्त उस भगवान की शरण लेते हैं, जो भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के पवित्र लीलाओं का श्रवण एवं उच्चारण करते हैं, उन भक्तों के विषय में आदर्शीकरण बता रहे हैं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ऋषिगण कह रहे हैं यत् पाद संशयासुत मुनयः प्रशमायनः सद्य पुनन्त्युपस्थिष्टा स्वर्धुन्या पोनुसेवया यत् पाद संशयासुत मुनयः प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्या पोनुसेवया यत्पाद संशया सूत मुनयः प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्या पोनुसेवया यत्पाद संशया सूत मुनयः प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्या पोनुसेवया यत्पाद संशया सूत मुनयः प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्या पोनुसेवया यत्पाद संशया सूत मुनयः प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्या पोनुसेवया यत्पाद संशया सूत मुनयः प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्या पोनुसेवया यत्पाद संशया सूत मुनयः प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्या पोनुसेवया यत्पाद संशया सूत मुनयः प्रशमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्या पोनुसेवया यत्पाद संशया सूत मुनयः प्रशमायना സദ്യ പുനന്ത്യുപസ്പൃഷ്ട സ്വർദുന്യ പൂനു സേവയ യത്പാദ സംശ്രയ സൂത മുനയ പ്രശമായന സദ്യ പുനന്ത്യുപസ്പൃഷ്ട സ്വർദുന്യ പൂനു സേവയ. ശബ്ദ അർത്ഥ ദേഖേംഗെ. यत अर्थात जिसके पाद मीन्स चरण कमल, यानी वो जिसके चरण कमल संशया शरणागत हो जाते हैं, यानी कि जिसके चरण कमल के शरण में आने से सूत, हे सूत गोस्वामी, मुनया बड़े बड़े मुनिगण, मुनया मतलब बड़े बड़े और मुनिगण का अर्थ है आगे प्रश्यमायना यानी परमेश्वर की भक्ति में लीन, यानी जो भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े मुनिगण की चरणों की जो शरण ग्रहण करता है, समझ में आ? यत्पाद संशया सूत, यानी जिसके चरणों की शरण ग्रहण करने से सूत बड़े बड़े मुनयः प्रश्यमायना, बड़े बड़े मुनिगण जो सदैव भक्ति में लगे रहते हैं, उनके यत्मना पहले से बोल दिया उनके चरण कमल, किनके चरण कमल, मुनया प्रशमायना यानी कि जो परमेश्वर की भक्ति में लगे रहते ऐसे भक्तों के चरणों कमल के शरण ग्रहण करते हैं सद्य, उनको क्या परिणाम क्या निकलता है, सद्य, सद्य का मतलब होता है तुरंत ही, उसी समय एक क्षण भी उसको उसके लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती ना, उसको बोलते सद्यो, इंस्टेंट जिसका रिजल्ट मिलने वाला है। सद्यो से क्या होगा, पुनन्ति, पुनन्ति मतलब पवित्र हो जाएंगे, पवित्र अर्थात किस चीज से पवित्र हो जाएंगे, वास्तव में अपवित्रता क्या है, ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े ऋषिगण हैं, जो मुनिगण हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, आप कोई गंदे कपड़े पहन के आओगे तो उनके चरण कमलों में नमस्कार करोगे तो आप साफ सुथरे हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पुनंत्य पृष्ठा, पुनंत्य का मतलब होता है पवित्र हो जाते हैं, अर्थात वो कौन सी गंदगी है, वो कौन सी खराब चीज, मतलब आपके पास वो कौन सा अपवित्रता है जिसको पवित्र करने के लिए भगवान के भक्तों की शरण में जाना पड़ता है। वास्तव में भक्तों, हमारे हृदय में इंद्रिय सुख की जो लालसा है ना, जो वासना है ना, काम इच्छा है ना, वही सबसे बड़ी अपवित्रता है। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, ये जो अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए किसी भी चीज का आकर्षण, जिस चाहे वो इंद्रिय कोई भी इंद्रिय हो सकती है, जैसे हमारी पांच ज्ञान इंद्रिया ना, वो सदैव लालायत रहती हैं अपने विषयों की ओर भागने के लिए, आंख देखना चाहते हैं, कान श्रवण करना चाहते हैं, मुख से हम बोलना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, हमारी त्वचा, हमारी स्पर्श इंद्रिय स्पर्श चाहते हैं। और वास्तव में ये सब किसके लिए है, ये मनुष्य जीवन का डिजाइन जो भगवान ने बनाया ना, ये भगवान ने इस तरह से बनाया है कि इस शरीर से हम अच्छी तरीके से भगवान का भजन कर सके। शास्त्र कहता है करो च तत् कर्म करो मनुष्य, ये हाथ भगवान ने इसलिए बनाए हैं ताकि हम भगवान के सामने इन्हें जोड़ सके, भगवान को नमस्कार कर सके, भगवान के पवित्र नाम के जप की माला पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण कर सके, भगवान के लिए भोग बना सके, भगवान को श्रृंगार करा सके, भगवान की सेवा कर सके। परंतु जीव इस संसार में आकर ये भूल जाता है कि मुझे इन हाथों से क्या करना है, और वो सदैव इन हाथों से केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। आगे कहते हैं श्रोति तत् पुण्य कथा च कर्ण, ये कान की डिजाइन भगवान ने ऐसी बनाई है ताकि कान से हम भगवान की कथा का रस पान कर सकें। वास्तव में भगवान की कथा हृदय में बिठाने के लिए होती है ताकि हम कान से सुने और भगवान की कथा को हृदय में बिठाएं। बट हम क्या करते हैं, दो भगवान ने कान दिए ना, एक साइड से कथा जानी चाहिए और हृदय के अंदर जाकर लॉक होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरी भौतिक चीजें है ना, जैसे किसी की बुराई सुनना, जैसे अब कान है तो जाहिर सी बात अंदर कुछ ना कुछ तो जाता ही रहता है, तो वो चीजें होती है ना, वो इस कान से निकालकर, इस कान से डालकर दूसरे कान से निकालने के लिए होती है। लेकिन वास्तव में रियल जो कान का मकसद क्या है, कि दो कान का मकसद क्या है कि जो भगवान से रिलेटेड चीज नहीं है उसको साइड में करो, इधर से निकाल दो, और जो भगवान से रिलेटेड चीज है वो डायरेक्ट से अंदर जाओ, क्योंकि कान में तो सारी जाएंगी ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि कथा जो होती है, भगवान के शब्द जो होते हैं, शास्त्र के जो शब्द होते हैं ना, वो इधर से डाल के इधर से निकालते हैं और दुनिया की बातों को हृदय के अंदर डाल देते हैं। ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है। भगवान की पवित्र, इतनी दफा हम कोई भी भगवान भगवद गीता का कोई श्लोक पढ़ेंगे, कितनी दफा उसको रिसाइट करेंगे, कितनी दफा पढ़ेंगे, फिर भी कुछ दिन के बाद वापस पूछेंगे तो नंबर भूल जाएंगे, भगवद गीता का श्लोक भी भूल जाएंगे। लेकिन पता, बचपन में भी किसी ने मुझे कोई बात बोली होगी ना, जिससे आप कोई भी हर्ट करने वाली बात, उसने मुझे ऐसा कहा था, मैं वो कभी भूल नहीं सकती जिंदगी में। तो ये भौतिक चीजों को हम हृदय में बिठाते हैं और जो भगवान की भक्ति, भगवान की कथा का श्रवण है, उसको हम दूसरे कान से निकाल देते। लेकिन भगवान ने इसलिए दो कान नहीं दिए हैं, भगवान ने इसलिए दिए हैं कि भौतिक चीजों को निकाल दो और भगवान की कथा को हृदय के अंदर डालो। लेकिन मनुष्य जीव संसार में आकर ये सब भूल जाता है। आगे कहते हैं, स्मरेति विषयंतम चितर जंगमेशु, यानी भगवान ने ये मन इसलिए बनाया है कि हम इस मन के अंदर भगवान का मनन कर सके, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सके, भगवान के विषय में सोच सके, भगवान से प्रेम कर सके। परंतु हम इस मन में भगवान के अतिरिक्त और सबको बिठाने के लिए तैयार हैं। दुनिया का जो, दुनिया भर का कचरा जो है, वो सदैव हम भगवान अपने हृदय में बिठाने के लिए तैयार होते, परंतु भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणगान को, भगवान के पवित्र नाम को इस हृदय में, इस मन में हम जगह नहीं देते। तो ये वास्तव में अपवित्रता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, सद्य पुनन्ति, मतलब पवित्र करते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, यदि हम उनके चरणों का आश्रय लेते हैं तो वो हमारे हृदय की इस अपवित्रता को समूल नष्ट कर देते हैं। वास्तव में इस अपवित्र का, जितनी भी हृदय के अंदर जो अपवित्रता है ना, उसका मूल कारण क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो है अज्ञानता। जीव इस संसार में आकर अज्ञान में गिर गया है, वो अपने आप को देह समझता है और इस शरीर को प्रसन्न करने के लिए, इस शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए जीवन भर प्रयत्न करता है। लेकिन यदि हम कभी किसी शुद्ध भक्तों की शरण ले लेते हैं तो वो शुद्ध भक्त जो है भगवान का, वो हमें ज्ञान प्रदान करता है, जिससे हमें ये रियलाइज होता है कि वाकई में मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कब तक यूँ अपने इस देह को, इस पंचभूत से बने हुए मांस के पिंड को प्रसन्न करने के लिए जीता रहूंगा। मुझे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करना चाहिए। मुझे वास्तव में मैं आत्मा हूँ और आत्मा की तुष्टि केवल कृष्ण कथा को श्रवण करने में और कृष्ण को स्मरण करने में, कृष्ण के नाम का जप करने में है। तो कोई शुद्ध भक्ति ही हमें ये करा सकता है। वास्तव में भक्तों, यदि कोई शुद्ध भक्त से हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो जाए ना, तो यू इंस्टेंट हमारा सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागेगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम खुद से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें हमारा इतना कृष्ण के प्रति हमारे लिए, हमारे हृदय में इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त हो और उनके मुख से भागवत कथा सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो। शब्दों का अर्थ देख रहे हैं हम लोग, सत्य का अर्थ है तुरंत ही पुनंति अर्थात पवित्र हो जाते हैं। उपस्पृष्टा, उपस्पृष्टा यानी केवल संगति से। संगति का क्या अर्थ है? वास्तव में हम जब किसी से मिलते हैं ना तो दो तरह से मिलते हैं। एक तो बस उसे मिल दिया, जैसे आप किसी गैदरिंग में जाते हो तो कितने सारे लोग वहां पर होते हैं ना, कोई भी प्रोग्राम में जाओगे तो बहुत सारे लोग होंगे, आप सबसे मिलोगे है ना, जितने भी लोग हैं आप आओगे तो सबसे हाय हेलो करोगे, मिलोगे और किसी से हरे कृष्णा कर दिया, किसी से नमस्ते कर दिया, फिर क्या करोगे? एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढोगे जिसके साथ आप बात करना चाहते हो, जिसके साथ आप समय बिताना चाहते हो, फिर आप उसके साथ बैठोगे और उसके गुण आपस में, जैसे जिसका हम सानिध्य का मतलब होता है मिलने का, केवल सानिध्य यहाँ पर लिखा हुआ उपस्पृष्टा मतलब उससे संगति करने। जब हम उससे मिलते हैं, वास्तव में भक्तों हम क्या करते हैं, भक्तों से मिलने का बस हरे कृष्णा कर दिया उससे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जिस कृष्ण प्रेम को ग्रहण किया है, यदि हम उनके साथ यानी कि अब भक्तों के साथ सानिध्य क्या होता है, उनके मुख से कथा का श्रवण करना। ऐसे अगर आप भक्तों से मिल रहे हो लेकिन आप उनसे कथा का श्रवण नहीं कर रहे हो, उनके साथ बैठकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं कर रहे हो, उनसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मांग रहे हो, तो फिर ऐसा मिलना नहीं। लेकिन वास्तव में कल्याण जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इंस्टेंट आपका कल्याण होने वाला है, फौरन से आप पवित्र हो जाओगे, यानी जब आप उन भक्तों का सानिध्य, उन भक्तों से मिलोगे और उनके मुख से भगवान की कथाओं को श्रवण करोगे, जब आप उनके साथ बैठ के भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करोगे, तो ये होता है वास्तव में उनकी संगति। और इसका लाभ क्या होगा? सद्यः पुनन्ति परस्पृष्टा, सिर्फ संगति मात्र से ही वो आपको पवित्र करेंगे। आगे एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है स्वरध्वनि। स्वरध्वनि का क्या मतलब होता है जानते हो? स्वरध्वनि का मतलब होता है गंगा, जो गंगा मैया है ना, पवित्र गंगा मैया, उसको स्वरध्वनि कहते हैं। पतित पावनी गंगा को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे जाह्नवी भी है ना, गंगा जी का नाम है। अच्छा, हम शाम को जो गौर आरती करते हैं ना, संध्या आरती के बजाय, उसमें कहां पर गंगा जी का एक नाम आता है? आप लोग मुझे पढ़ के बताना, रोजाना आरती करते हो ना, अब देखो ना, ऐसे ही देखो आप विदाउट ट्रांसलेशन के, आप देख बता सकते हो कि कहां पर है ना गंगा जी का नाम आया है। अब ये देखो, रोजाना हम पढ़ते तो हमें इसके मीनिंग थोड़े माइंड में होने चाहिए ना, अगर नहीं आता तो फिर भले देखना, लेकिन पहले से कोशिश करना कि आपको ऐसे ही समझ में आता है कि कहीं पर है ना गंगा जी का नाम लिखा हुआ है। महाराज हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, सर्धुन्यापो, आपो का मतलब होता है जल, अनुसेवया यानी उपयोग में लाने से, यानी कि अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गंगा जी का जल है वो अनुसेवया मतलब बार बार उसको हम जब उसमें स्नान करते हैं और तभी वो हमें पवित्र करता है, और फिर उससे भी क्या होगा, आपकी पवित्रता होगी लेकिन हृदय के अंदर से इच्छा खत्म है, अपराध नष्ट होंगे लेकिन अपराध करने की भावना जो हृदय में ना वो समाप्त नहीं होगी। हाँ, अपराध तो चलो खत्म हो गए उसमें स्नान करने, लेकिन बाहर आप आए वही इंद्रिय सुखों में आपकी आसक्ति, इंद्रिय सुखों की लालसा, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि आपके हृदय में भरे हुए हैं, तो फिर आप बाहर आके वही करने वाले हो, फिर वापस स्नान करना पड़ेगा, फिर वही। तो इसमें क्या है, हमें क्या बताया जा रहा है, इतना भक्तों की महानता बताई जा रही है कि क्योंकि गंगा जी में स्नान करने से क्या होगा, आप अंदर जाओगे स्नान, और ऐसा भक्तों की तो उनके साथ तो सिर्फ संगति काफी है, उनके दर्शन और उनके प्रवचन ही काफी है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे गंगा में तो जाके स्नान करना पड़ेगा, भक्तों ने बस दूर से आपको निगाह करम उनकी हो गई, उनकी नजर उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो गई, और उनके मुख से यदि आपने पवित्र कथा का श्रवण कर दिया, यदि उनके साथ कीर्तन कर दिया, तो ये काफी है। इसलिए शास्त्र कहता है नरोत्तम दास जी बहुत ही सुंदर बताते हैं। गंगा र परश हुई पश्यति पावा दर्शन पवित्र करे तुम्हार गुणा। गंगा जी को स्पर्श करने से, गंगा जी के अंदर स्नान करने से ही कोई जीव पवित्र होता है, परंतु भक्त की तो केवल दर्शन करने से। सद्यो पुनन्ति पृष्ठा, हमारे जन्म जन्मांतर के हृदय के अंदर जो भौतिक काम वासना लगी हुई है वो समस्त का समूल नष्ट हो जाता है। अनुवाद देखिए, हे सूत, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत ही पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। यहाँ पर गंगा और भक्तों का कॉम्पेयर, भगवान के शुद्ध भक्त और गंगा जी का कॉम्पेयर एक तरह से बताया है। इसमें क्या है, वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो ये केवल और केवल भगवान की महिमा का ही गुणगान है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और चीज बताए। ऋषि मुनि जानते हैं कि भगवान के अतिरिक्त किसी और के विषय में बात करना समय का अपव्यय है, वेस्ट ऑफ टाइम है। वो किसी और की बात नहीं कर रहे, वो भगवान के श्री चरणों की बात कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जी भगवान के श्री चरणों से निकली हैं, इसीलिए उनका ये प्रताप है कि वो आपको पवित्र कर सकती हैं। ये श्रीमती जो है ना गंगा मैया जो है, उसका ये प्रभाव क्यों है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली है। लेकिन फिर भी ये प्रताप तो इसीलिए होना कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्रताप बता रहे हैं ना। लेकिन डिफरेंट क्या है कि वो बारंबार पवित्र कर देती है गंगा मैया, इसमें रंश मात्र भी संदेह नहीं। लेकिन उसमें स्नान करना पड़ता है, उसको स्पर्श करना पड़ता है। लेकिन भगवान के पवित्र भक्त जो होते हैं, उनका सानिध्य मात्र ही आपके हृदय की समस्त अपवित्र भावनाओं को, समस्त अपवित्रता का समूल नाश कर देते हैं। अब भक्तों के अंदर इतना पावर आया किधर से, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं, भगवान की अनकथा का श्रवण करते हैं, इसलिए। और अब इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, वो चरणों से निकली हैं और वो चरणों का सेवन करते हैं, मतलब चरणों की भक्ति करते हैं, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस कैसे है कि देखो, गंगा जी जब से भगवान के चरण कमलों से निकली है तब से वो दूर हो रही है, भगवान के चरण कमलों से और दूर जाती है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ऐसे ना। ऐसा नहीं है कि भगवान के चरणों की ओर आ रहे, इतना बहती जा रही है, बहती जा रही है। लेकिन फिर भी, क्योंकि उन्होंने एक बार स्पर्श किया है भगवान, यानी कि भगवान के चरण कमलों से निकलकर वो आई हैं। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने वामन अवतार लिया था और दूसरा पग रखने के लिए त्रिलोकिका से उन्होंने ना स्वर्ग से जब उनका चरण गुजरा था ना, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उस चरण का अभिषेक किया था। उस अभिषेक का जो कमंडल का जल जो था, वो जब भगवान के चरण कमलों से स्पर्श होकर जब गिरा तो वो गंगा जी बना। फिर बाद में वो बड़ी स्टोरी है जो शिव जी ने उनको जटाओं में पकड़ा था फिर वो। लेकिन ये है वो जल जो भगवान श्री कृष्ण की चरणों को अभिषेक करके निकला, ठीक है। अब वो क्या है, जब से वो निकला है तो नीचे गिरता है ना, जैसे जल का क्या प्रवाह आगे जाने का, आगे जाने का। तो गंगा जी जब से भगवान के श्री चरणों का स्पर्श किया है, वो आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। लेकिन फिर भी उनका प्रताप खत्म नहीं होता है, कभी भी समाप्त हुआ है ना होगा। जब भी कोई गंगा जी में स्नान करेगा तो निस्संदेह वो पवित्र होगा। लेकिन भक्त क्या है, भक्त में और गंगा जी में क्या डिफरेंस है, भक्त जब आप देखो, कभी कोई कहीं पर भी पैदा हुआ हो, कोई भी जगह पर, वो जैसे ही भक्त का, किसी दूसरे भक्त का सानिध्य प्राप्त करता है, फिर वो क्या करता है, दिन ब दिन भगवान के चरणों के करीब आता जाता है। एक माला करता है, फिर दो करता है, फिर आठ करता है, फिर दस करता है, फिर सोलह करता है, फिर कहता है कि दिल दिल नहीं भर रहा है। कृष्ण समय ढूंढ रहा होता है, अपने समय के शेड्यूल को इस तरह से बनाता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा कर सकूं। मतलब क्षण प्रतिक्षण वो भगवान की चरणों की ओर भी करीब आता जाता है। तो जब इतना करीब आता जाता है तो फिर क्या होता है, उसका प्रभाव ये होता है कि उसके अंदर इतना पावर आ जाता है कि वो सानिध्य मात्र से दूसरों को पवित्र कर सकता है। और गंगा मैया जो है ना, वो सिर्फ दर्शन करने से आपको पवित्र नहीं करती, उसमें स्नान करना पड़ता है, उसके अंदर है ना आपको डुबकी मारनी होती है। लेकिन भक्तगण तो केवल सानिध्य मात्र से, केवल अपने चार शब्द में लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हो। यदि थोड़ा सा भी साधु संघ प्राप्त हो जाता है तो भी सर्व सिद्धि क्या है, भौतिक अज्ञानता का नाश, कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो और आपको आपकी आत्मा के कल्याण के लिए कृष्ण भक्ति को अपनाना होगा। यदि ये कोई साधु आके हमें बता दे और किसी संत के द्वारा, किसी भगवान के भक्त के पवित्र मुखारविंद से ये शब्द हम सुन लेते हैं, तो हमारे कान से अगर हम वाकई में सीरियस हैं तो फिर क्या होगा, हमारे हृदय से जो भौतिक मलिनता है उसका समूल नष्ट हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर से सब शब्द इस श्लोक को समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही किसी को आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है, किंतु भगवान की शुद्ध भक्ति की कृपा से तुरंत ही पवित्र हुआ जा सकता है। श्री गोपाल जी कहते गंगा जल में दीर्घकाल यानी ज्यादा टाइम तक जब हम प्रयोग करेंगे ना गंगा जल का, तो ही हमें आध्यात्मिक प्रगति होगी। लेकिन शुद्ध भक्त की कृपा तुरंत, जब शुद्ध भक्ति कृपा होगी तो तुरंत ही हम पवित्र हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, चाहे कोई शूद्र हो या स्त्री वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापिस जा सकता है। ये भगवान की असीम कृपा है, ये असीम करुणा है भगवान की, कि कोई शर्त नहीं रखी कि मेरी शरण में केवल वही आ सकते हैं। वास्तव में भक्तों, अगर भगवान ने एक भी शर्त रखी होती ना कि आपको मेरी शरण में आने के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो फिर आज शायद हम में से कोई भी भगवान की शरण ग्रहण करने के योग्य ना होता। क्योंकि अपराधों के कारण हम यहाँ पर हैं, अपराधों के कारण ही हमारा हृदय मलिन है। और यदि कोई छोटा सा अपराध भी भगवान ने बोल दिया होता कि ये करने वाला मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकता, तो फिर हम सब योग्य ना होते। वास्तव में यहाँ पर शूद्र और स्त्री के विषय में स्पेशल बताया था भगवान, याद है वाला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 32 में भगवान ने कहा था, माम हि पार्थ व्यापाश्रित्या ये पेस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा ते पियान्ति परां गतिम्। अर्थात हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही जन्म जन्म निम्न जन्म स्त्री वैश्य या शूद्र ही क्यों न हो, वे परम गति को प्राप्त होते। ये सब मतलब स्त्री वैश्य और शूद्र, ये जब हम ज्यादा अपराध करते हैं तब ये योनियां मिलती हैं। वरना भगवान बताते हैं कि जिनके पुण्य बहुत ज्यादा होते हैं उनको अच्छी योनियां मिलती है। यानी कि पुरुष लिंग जो है उसमें क्या है, स्वतंत्रता है ना, उसमें स्वतंत्रता है, आप अपनी मर्जी से भक्ति कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से प्रचार कर सकते हो, लेकिन स्त्री क्योंकि पराधीन होती है तो फिर ना वो भक्ति में भी, अब जाहिर सी बात है अगर किसी के घर के सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं तो पुरुष जो है वो उनके साथ है ना विरोध भी कर सकता है या फिर अपनी बात एटलीस्ट मनवा सकता है, लेकिन स्त्री वीक है इस चीज में, लेकिन मनोबल बहुत है, ऐसी बात नहीं। आगे भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों के बहुत सारे गुण भी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण 10.34 में स्त्रियों के बहुत गुण बताते हैं। भगवान कहते हैं कीर्ति श्री वाक्चनारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति ये सब क्षमा ये सब गुण है, बहुत गुण होते हैं स्त्रियों में यदि वो चाहे। अब एक पुरुष भक्त बनता है तो स्वयं भक्त बनता है, लेकिन यदि स्त्री डिटर्मिनेशन इसके अंदर इतना हो और वो है ना शुद्ध संकल्प के साथ भक्ति में आगे बढ़ना चाहे तो अपने पूरे परिवार को भक्त बना सकती है। अच्छा अच्छा भगवान का प्रसाद खिलाकर भगवान के पवित्र शुद्ध भक्ति के साथ है ना सबके मन को परिवर्तित करने का उसके अंदर साहस है। लेकिन ये योनि पुरुष से कम यहाँ पर बताई गई है। भगवान ने क्या कहा है स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रा कि स्त्री है वैश्य। अब ये वैश्य और शूद्र जो लिखे हुए हैं ना वो पुरुष भी है, ऐसा नहीं है, इसके साथ ही मिलाया है, समझ में आ रहा है ना। देखो वैश्य 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 क्या है जो वैश्य है और शूद्र जो शूद्र है। इनकी स्त्री नहीं, ब्राह्मण की स्त्रियां और ब्राह्मण खुद उसमें क्या है कि उसमें कम क्योंकि वो प्रचार ज्यादा उसमें अब तो इतना है श्री प्रभुपाल जी की कृपा है सब करते हैं, लेकिन उनको यज्ञ वगैरह पहले नहीं कर रहे कि अभी पता नहीं करते हैं, लेकिन है ना यहाँ पर बताया तो भगवान ये क्या बताना चाह रहे हैं कि मेरी भक्ति करने के लिए किसी को कोई पाबंदी नहीं है। चाहे आप अपने कर्मों के अनुसार स्त्री बने हो, चाहे शूद्र बने हो, चाहे वैश्य बने हो, चाहे कटर का कीड़ा बने हो, कुत्ता बने हो, कुछ भी बने हो, मैं भक्ति करने से मना नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी योनियों में क्या आपको चांस नहीं मिलता है ना, उन योनियों में आपको चांस इतना नहीं मिलता है, तो मनुष्य बनने के बाद भी आप स्त्री बने हो, चाहे शूद्र बने हो, चाहे ना कुछ भी बने हो, वैश्य बने हो, तो भी भगवान की शरण में आने के लिए आपको मना नहीं किया जाएगा कि आप इतनी कम योनि वाले हो तो आप। तो फिर यहाँ पर भगवान श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसा भगवान ने कहा ते पियांति परम गति कि वो परम गति को प्राप्त होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। वास्तव में भक्तों डायरेक्ट से आप भगवान को शरण को ग्रहण कर ही नहीं सकते, आपको समझ में ही नहीं आएंगे। इन चरणों का प्रताप इतना मोहित करने वाला है कि हम पहले श्लोक में पढ़ के आए कि मोहयंती यत सूरयः, बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े लोग जो कि इतना अध्ययन करते हैं वो भी मोहित हो जाते हैं भगवान के श्री चरणों के चमत्कार को नहीं समझ पाते। तो हमारे अंदर इतना पावर नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है, इतनी शुद्धता भी नहीं, तो हम डायरेक्ट से भगवान के चरण कमलों के प्रताप को नहीं समझ सकते जब तक कि कोई शुद्ध भक्त की कृपा दृष्टि हम पर ना हो जाए। और यानी भगवान की चरण आप सही मायनों में तभी ग्रहण करते हो कर सकते हो जब किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य करते हो। यहाँ पर हृदय में एक प्रश्न उठ सकता है कि खाली भक्तों का संग करने को क्यों कहा गया। अब भक्त जो कार्य करते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो वही काम हम भी करें और हम शुद्ध हो जाएं। उनका संग करने को लिए क्यों कहा, हम खुद से तपस्या करें, खुद से है ना हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें। भक्ति तो करनी है, वो तो शास्त्र पढ़ो और करना शुरू कर दो, संग करने के लिए क्यों कहा है। ऐसा लगता है ना दिल में कि भाई हम अब जरूरी है दूसरों का संग भी करें, उनसे सुने, हम खुद से भी करें। तो यही इस बात का उत्तर श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। जब राजा भरत इस संसार से जब जा रहे थे तो हिरण, जैसे सब आप जानते हो कि हिरण के मोह की कारण उनको दूसरा जन्म हिरण का प्राप्त हुआ, लेकिन उस जन्म में भी उनकी मृत्यु हो गई और बाद में उनको जड़ बढ़त का जन्म जब मिला। आगे कथा आएगी, मेन पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जब वो जड़ बढ़त के रूप में संसार में आए तो जब वो राजा रहुगण की पालकी को लेकर जा रहे थे और रहुगण राजा डिस्टर्ब हो रहे थे कि भाई ये क्यों ऐसे चल रहा है, वो चिंटियों को बचाते हुए चल रहे थे कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना पहुंचे, तो फिर वो बता रहे थे राजा ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम इस तरह कर रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आता मैं यहाँ पर राजा बैठा हूँ। तो है ना, वो सारा उस समय जड़ बढ़त ने फर्स्ट टाइम जीवन के जिंदगी में कभी भी बात नहीं करते थे, किसी से बात नहीं करते थे, किसी से मोह नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कार्य कोई बोलता था करो तो करते थे, लेकिन किसी चीज में, संसार की किसी भौतिक चीज में कोई आसक्ति नहीं थी। तो उस टाइम जड़ भरत ने फर्स्ट टाइम उपदेश किया और क्या बोले हैं, बहुत बहुत उपदेश दिया। जब वो कथा आएगी तो हम पढ़ेंगे। सार कहा कि आप यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो ना, तो कहते हैं रहुगणे तपस्याम नहीं आती। हे रहुगण, हे राजा, भगवान तपस्या करने से नहीं मिलते। नच इज्जियात नरोपणात ग्रहत, अर्थात घर छोड़कर कहीं चले जाने से, एकांत में अपनी भक्ति करने से भगवान नहीं मिलते। न छंदस्या जल अग्नि एवं सूर्यो, सूर्य में तपने से, पानी में पड़े रहने से, अग्नि में जलने से भगवान प्राप्त नहीं होते। तो पूछते हैं रहुगण, जब इतना सब करने से भी भगवान प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर कैसे होते हैं? तो यहाँ पर राजा भरत जो झर भरत है अत्यंत ही सुंदर उपदेश देते हैं और कहते हैं बिना महत पादु रजोभिषेक, जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की रज से अभिषेक नहीं किया जाएगा तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो यदि जब तक किसी शुद्ध भक्त की कृपा हम पर नहीं हो जाती है, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्त, जब कृष्ण की कृपा होती है तभी कोई शुद्ध भक्त आपको अपना शिष्य स्वीकार करता है। तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरु महाराज ने अपने श्री चरणों में स्वीकार किया। हमारे जीवन का यदि कोई सबसे बड़ा लाभ है ना, तो यही है कि हम एक शुद्ध भक्त के, भगवान के एक शुद्ध वैष्णव, एक शुद्ध गुरु के शिष्य हैं। किसी शुद्ध गुरु ने हमें अपने सानिध्य में स्वीकार किया है, अपना माना है। हजारों अपराधों की पोटली जो हम सदैव अपने सर पर उठाए घूमते हैं, उसको देखते हुए भी उन्होंने सहअधिकार ये कहा अपनी कृपा से कि ये मेरा शिष्य है। तो यदि कोई शुद्ध गुरु आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करता है तो इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता। तो इस बात को यदि हम ऐसे कहें कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अभी तक हमें किसी शुद्ध वैष्णव ने अपने शिष्य के स्वरूप में स्वीकार नहीं किया, अभी तक किसी शुद्ध वैष्णव ने, शुद्ध गुरु ने ये नहीं कहा कि ये मेरा शिष्य है। जब तक कोई शुद्ध गुरु आपको अपनी शरण में नहीं ले लेता तब तक भगवान को आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर तक हमें यूं ही भटकते रहना पड़ेगा जब तक हम किसी शुद्ध गुरु के शिष्य नहीं बन जाते। तो अपने जीवन को हमें सार्थक करना है। यदि हम वाकई में चाहते हैं कि शुद्ध लाभ हो, कृष्ण प्राप्ति हो, तो इसका केवल एक ही तरीका है। हम चाहे जितने भी अपराधी हैं, जो भी है, कुछ सब कुछ खोल के रख दो गुरु महाराज के सामने और बोलो इतना हूं, ऐसा हूं, आप स्वीकार करो। और जब गुरु स्वीकार कर लेते हैं ना शिष्य को, तो फिर क्या होता है, सद्यो पुनंत्य पत्पृष्ठा, पढ़ के है ना हम, गुरु की जब कृपा दृष्टि हो जाती है तो हृदय की जो भौतिक मलिनता है ना, जो भौतिक आसक्ति है जो हमें अपराध करने पर विवश कर देती है, वो अज्ञान का समूल नष्ट हो जाती है। तो इस चीज में हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं है कि कब समाप्त हो जाए। तो जिसने अभी तक गुरु नहीं किया है ना, तो उसको समझना चाहिए कि अब समय बहुत कम है, किसी शुद्ध वैष्णव के चरणों का आश्रय ग्रहण करना बहुत 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 अनिवार्य है। इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है, शुद्ध भक्तों के चरणों को ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद या विष्णुपाद कहलाते हैं। जिससे ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों का प्रतिनिधि होने का संकेत मिलता है, अर्थात जो सदैव भगवान की भक्ति करते रहते हैं, सदैव भगवान के शुद्ध पवित्र नाम का जप और कथाओं का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्तों को अपना गुरु मानकर उसके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान उद्धारित है, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार करते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। वास्तव में भगवान आपको अपने धाम में तब बुलाना चाहते हैं जब आप भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। अब थोड़ा अपने आप से सीरियस होके पूछें, क्या वाकई हम चाहते हैं कि हम भगवान के धाम में जाएं? यदि देखिए, आपको यदि इंडिया जाना है या किसी दूसरे कंट्री में जाना है और आप सीरियस होगे तो क्या करोगे? सबसे पहले प्रयत्न करोगे ना, वहां पर मुझे कितना कितना बैलेंस चाहिए, कितना अमाउंट मुझे चाहिए, उतना जमा करोगे ना आप कि भाई मैं अगर जा रही हूँ, किसी आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, तो मुझे एटलीस्ट इतना धन राशि चाहिए। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप जाने का नहीं सोचोगे। पहले क्या करोगे, बोलोगे नहीं, मैं अभी अपनी जितनी भी इनकम है उसको सेव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी कंट्री में जाना है और मुझे इतना अमाउंट चाहिए होगा वहां के लिए। ऐसा करोगे ना? अब यदि आप वाकई में सीरियस हो, यदि आप वाकई में भगवत धाम चाहते हो, तो वहां पर जाने के लिए जो आपको धन राशि चाहिए उसका भी तो आपको संगठन करना होगा, उसको भी तो जमा करना होगा। और वहां पर जाने के लिए किस धन की आवश्यकता है? गोलोक केरव प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। वहां पर केवल और केवल भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन, केवल संकीर्तन का धन ही वहां पर काम आएगा। ये जो हम भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं ना, जिससे भगवान के चरणों के प्रति हमारा प्रेम उदित होता है, प्रेम जो है वो हृदय में सोया हुआ है और जब जागता है भगवान की कथाओं को श्रवण करने से, तो ये है धन, जिस प्रेम का धन चाहिए वहां पर जाने के लिए। और ये प्रेम केवल भगवान की कथाओं का श्रवण करने से एवं भगवान के नामों का उच्चारण करने से ही प्राप्त होगा। तो यदि हम सीरियस हैं तो हम ये देखें कि हम कितना टाइम दे रहे हैं कथा श्रवण को और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने को। सीरियस है तो जाहिर सी बात है धन जमा करना पड़ेगा ना इसके लिए। क्या ये कहना काफी है कि हम भी भगवान के धाम जाना चाह रहे हैं? क्या भगवान हृदय में बैठकर हमें देख नहीं रहे हैं कि हम कितना सीरियस हैं? निसंदेह हम अपने प्रयत्न से, हम अपने प्रयासों से भगवान के धाम नहीं जा सकते। जब तक कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से भगवान को कृपा करने के लिए विवश कर सकते हैं। जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक भगवान का दिल नहीं करेगा कि हमारे पास आए। तो यहाँ पर भी देखो श्रील प्रभुपाद जी कितना संकेत से और बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि वे उन पतित आत्माओं का भव सागर से उद्धार करते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। जिन्हें देखते हैं भगवान कि ये वाकई में सीरियस है, वाकई में भगवान के पवित्र नाम का जप करने का बहुत ही सीरियसनेस के साथ, बहुत ही दिल से प्रयास कर रहा है, भगवान के लिए अपने निद्रा का, अपने भौतिक सुखों का परित्याग कर रहा है, जो भगवान देखते हैं जब कि वो कितना सीरियस है, तब वो भगवान भी उतना ही सीरियस होते हैं और अपने पास बुलाने के लिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों का तो उप प्रभु यानी उप भगवान कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्कपट शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का दास समझता है, यही शुद्ध भक्ति मार्ग है। वो अपने गुरु महाराज को तो भगवान का भगवान के समान मानता है, लेकिन वो शुद्ध गुरु जो कि भगवान, हम जिसे भगवान के बराबर समझते ना, लेकिन वो क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त है तो वो सदैव अपने आप को दास मानता है। और इस तरह से जो शिष्य भले कितना ही आगे बढ़ जाए, उसे हमेशा शुद्ध भक्तों का दास अपने आप को समझना, यानी कि अपने माइंड में कभी भी एक क्षण के लिए भी ये बात न आए कि मैं भी कुछ हूँ या मेरी भी आई एम नथिंग, ये आना चाहिए हृदय के अंदर, एक ही भाव होना चाहिए, तणादपि सुनी चाहिए ना, तरोरपि सहशोना अमानी न मान देना कीर्तनी है सदा। यदि भगवान के पवित्र नाम का जीवन भर कीर्तन करना है, यदि सदैव भगवान के पवित्र नाम के साथ जुड़ा रहना है, तो उसका एक ही ये चार चीजें जो चैतन्य महाप्रभु ने बताई है कि अपने आप को घास के तिनके से भी ज्यादा कमतर समझना है और वृक्ष से भी अधिक सहन शुरू, कुछ मान की कोई इच्छा नहीं करनी है, कभी हृदय में मान की अभिलाषा नहीं करनी है, लेकिन अन्य समस्त लोगों का सम्मान करना है। यदि ये हृदय के अंदर आ जाए ना, ये हम शुद्ध भक्त पढ़ रहे ना, तो शुद्ध भक्त की ये क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर। जब ये क्वालिटीज उसके अंदर है, तभी वो शुद्ध भक्त कहलाने के योग्य है। केवल शास्त्र पढ़ने की बात नहीं है कि वो कितना शास्त्र तो मुझ जैसा मूर्ख एक नरकीय जीव जो कि नरक से आता है ना, वो भी पढ़ सकता है आज, लेकिन यदि आपके अंदर ये आचरण नहीं है, भक्तों की क्वालिटीज नहीं है, तो फिर वो शुद्ध भक्त नहीं, उसकी संगति करने के लिए नहीं कहा। बल्कि जो वाकई में विनम्र है, जिसके हृदय में दूसरों का अपमान करने की या दूसरों की निंदा करने की कोई हृदय में भावना नहीं है, वो सबका सम्मान करता है, उसके हृदय में सबके लिए सम्मान है और अपने लिए, अगर कोई निंदनीय उसके हृदय में माइंड में कोई चीज है ना कि ये गलत है, ये निंदनीय है, ये सही नहीं कह रहा है भक्ति, तो वो केवल अपने आप को अमानी, वो सदैव अपने आप को यही सोचता है कि मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ, बाकी तो सब कितने अच्छे भक्त हैं, वो सब कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे पवित्र आत्मा जो कि सदैव सबके ऊपर कृपालु होते हैं, उनके मुख से यदि हम भगवान के कथाओं का श्रवण करते हैं, यदि उनका सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, तो हम भगवान को, भगवान के धाम को अत्यंत ही जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं।